कभी कभी तो तुम्हारी जो कल्पनाएं हैं वो कल्पनाएं श्रद्धा का रूप ले लेती तो उसमें बड़ा सामर्थ्य आ जाता है। जैसे धन्ना जाट आदि की कथाएं तुमने सुनी होगी। धन्ना जाट की कथा क्या कहती है कि कोई गांव में पंडित आया कथा करने, भागवत आदि की कथा करके पंडित जब रवाना होता है तो 7 दिन कथा सुनकर इनका दिल भर गया, धन्ना जाट का लड़के का। पंडित जी घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, पंडित जी के पैर पकड़ लिया कि गुरु महाराज आपको पहले नहीं जाने दूंगा, आप बोलते ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो, मेरे पास ठाकुर जी नहीं, आप ठाकुर जी दो। बोले ले लेना कैसे, बोले नहीं आप ठाकुर जी के लिए सुनाते तो आपके पास ही होंगे ठाकुर जी। उस बेचारे को पता नहीं, पंडित ने पिंड छुड़ाने के लिए काफी क्या, लेकिन धन्ना जाट की जो कल्पना है वो विश्वास में बदल गई। बोले आदमी की कभी कभी कल्पनाएं विश्वास का रूप तेज ले लेती है। पंडित ने सोचा अब इसको कैसे छुड़ाऊं। पंडित भंगेड़ी थे, भांग घोट के पीते थे रोज, जय जय। तो भांग घोटने का जो सिलबट्टा था वो पकड़ा दिया, बोले ये ठाकुर जी है। बोले क्या करना, नहा के नलइयो खिलाकर खइयो, बस ये आज्ञा मान लेना। नहा के सिलबट्टे को नहला दिया। अब भोजन एक रोटी रोज मिलती थी क्योंकि खेत था थोड़ा सा, छोटा सा पुना एकर, मां और बेटा थे, रोटी सब्जी या चटनी रख दी भगवान के आगे, खा ले आधी तू खा ले फिर मैं खाऊंगा। गुरु महाराज ने कहा है नहा के न लइयो खिलाकर खइयो, अब तू खाएगा तभी तो मैं खाऊंगा, खा ले ठाकुर। लेकिन ठाकुर इसके मन में ये नहीं कि सिलबट्टा है, ये तो बस पंडित जी ने कहा, गुरु महाराज ने, ठाकुर खा ले। उसकी जो और वृत्तियां थी वो वृत्तियां सब कट आउट हो गई और तदाकार की गरेड़ पड़ गई। अभी उतनी पड़ी जितना घटना में चाहिए। एक दिन हुआ ठाकुर जी ने नहीं खाया, भूखे रहे। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, और दिन दिन भूख प्यास तड़फ बढ़ती रही। मैंने भी मारने लगे कि तुम तो अमीरों के हो, तुम तो पढ़े लिखे को, हमारे जैसे गरीब की रोटी तुमको अच्छी नहीं लगती, पंडित तो तुम्हें मलाई खिलाते होंगे, पंडित तो तुम्हें रबड़ी खिलाते होंगे, अब मैं कहां से लाऊं, खा ले, कभी मालदार हो जाऊंगा तो रबड़ी भी खिलाऊंगा, अभी रोटी तो खा ले, क्या तेरे को भूख नहीं लगती। वो अपनी जैसी जैसी उसकी भावनाएं कल्पनाएं थी वो बेचारा बड़बड़ाता, लेकिन उसकी बुद्धि सत्य बुद्धि थी कि ठाकुर जी खाएंगे। कथा कहती है कि 7वां दिन हो गया, अब भूख ने तंग किया, आदमी भोजन करता है तो उसकी चेतना भोजन पकाने में पेट के करीब होती है, और भोजन आदि नहीं करता तो उसकी प्राण शक्ति ऊपर चढ़ जाती। अब आ गए जिद पर, और स्त्रियां भी जब रोटी नहीं खाती ना तो जिद बढ़ जाता है उनका, और धारियों काम करा भी ना खे, और सत्याग्रह बताग्रह क्या है, रोटी नहीं खाया है तो फिर जिद पकड़ जो है बढ़ जाती, और सामने वाले की पकड़, रोटी खा रहा है तो उसकी पकड़ कम हो जाएगी और हम नहीं खाते तो पकड़ ज्यादा हो जाएगी। इसलिए कई बार सत्याग्रह फाफड़ा खा के जो सत्याग्रह करते हैं उनके दम नहीं होता। ओम ओम ओम, वृत्ति अंदर खटकती है ना, तो त्यां बैठा है। वृत्ति में दृढ़ता हो तो सामने वाले के, सारी दुनिया संकल्पों की वृत्तियों की है, जिसकी वृत्ति दृढ़ है उसकी जीत होती है और जिसकी वृत्ति थोड़ी हिल गई उसकी हार होती है। जैसे दो मल जिसमें बल ज्यादा युक्ति ज्यादा, ऐसे ही है सारा दुनिया वृत्तियों का खिलवाड़ है। निदान आखिर धन्ना जाट आया अपनी जटेती पर कि तू खाता नहीं, तेरे को पंडित जी के सिवा अच्छा नहीं लगता तो मेरे को तेरे सिवा भी जीना क्या। निकाला छरा कि तू नहीं खाता है तो अब मैं नहीं हो जाता हूं, भूखे मर मर के मर जाऊं, इससे तो ऐसे ही मर जाऊं तेरे आगे बलिदान होकर। गुरु महाराज ने कहा नहाके निलाइयो खिलाकर खाइयो, तू नहीं खाता तो मेरा रहना जीना किस काम का। गुरु महाराज बेचारे अच्छे थे, दे ही नहीं रहे थे, मैंने जबरन मांगा और मैं तेरे को भूखे मारूं और तू मेरे पास आता भी नहीं। सुना था कि ठाकुर जी दयालु होते हैं लेकिन ये पत्थर दिल, सचमुच तुम पत्थर जैसे हो, जैसे बाहर से दिखते हो ऐसे ही भीतर हो, हमने सोचा कि बाहर से पत्थर जैसे दिखते हैं, भीतर कोई दिल होगा, लेकिन तुम्हारे दिल नहीं। अब मैं जाता हूं, लेकिन वो जाने का तुम मत करना, क्योंकि उसमें तीव्रता चाहिए। उठाया छरा और ज्यों पेट में भोंक मारने की तैयारी की, और ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए। हाथ पकड़ के धरना, माफ करना मुझे, माफ करना, देरी हो गई। झट 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 रोटी खाने लग। धरना क्या कहता है, ठहर जा आदि मेरे लिए रख, मैं भूखा हूं, क्या करता है तू। तो धन्ना के अंदर ही वो चैतन्य आत्मा था जिसने सिलबट्टे से प्रभु को भोजन करता कर दिया। ऐसी बात नहीं, वही का वही, वैसे का वैसा, पूरे का पूरा हमारे पास है। लेकिन हमारी वृत्ति में विश्वास कहां, हमारी वृत्ति में ऐसी एकाग्रता कहां, हमारी वृत्ति में ऐसी गहरी दृढ़ता कहां। इतना हो भी जाए, सिलबट्टे से ठाकुर जी निकल आए और ठाकुर जी तुम्हारे खेत में काम करें, अथवा पंडित जी का वो लंबा कथा है, हम सार समझ रहे हैं इसका थोड़ा हिस्सा, फिर भी धन्ना जाट की ये पूर्णता है ऐसा वेदांत को जानने वाले महापुरुष नहीं स्वीकार करेंगे। वृत्ति में विश्वास हुआ लेकिन है वृत्ति। वो ठाकुर जी भी कब तक रोटी खाएंगे और तू खिलाने वाला भी कब तक रहेगा, तू ठाकुर जी के स्वरूप को और अपने स्वरूप को नहीं पहचानेगा तब तक ये मध्यम भक्ति हुई। ईश्वर के रास्ते जाने वालों के बहुत लोग हैं, लेकिन इनके तीन भेद होते हैं। शुरुआत ये होती है कि वो है, भले अपने को दिखता नहीं है लेकिन वो है। मैं वो है, ईश्वर है। आगे आदमी बढ़ता है तो महसूस होता है कि वो मेरा है, भगवान मेरा है। और आगे साधना में बढ़ता है तो फिर अपने को हटा देता है, वो मेरा नहीं, हम न तुम, दफ्तर गुम, वो स्वयं वो हो जाता है। तस्यवाहम तवैवाहम सुवहम, मैं उसका हूं, फिर बोलता मैं तेरा हूं, फिर आगे बढ़ जाता मैं तू हूं, तू मैं है, एक ही एकमेवा द्वितीय। मैं उसका हूं दूरी है, मैं तेरा हूं थोड़ी नजदीकी है, लेकिन मैं हूं ही नहीं तू है, अथवा तू नहीं मैं, दोनों एक हो गए। ये साधना की पराकाष्ठा हो गई। वृत्ति में विश्वास आए अच्छा है, लेकिन वही वृत्ति का जो विश्वास है उस विश्वास से भी एक कदम आगे चला जाए तो विश्वास भी वृत्ति का है, अंतःकरण का है। अंतःकरण को सत्ता देने वाला मैं चैतन्य अनंत अनंत ब्रह्मांडों में फैल रहा हूं। जैसे लाइट है ना, हीटर में आ जाती तो गर्मी देती है, फ्रिज में आ जाती है तो ठंडक देती है, ऐसे ही मुझ चैतन्य का स्वभाव है। सूर्य में आकर तपन देता हूं, चांद में आकर शीतलता देता हूं, अंतःकरण सात्विक में आकर प्रेम और आनंद छलकाता हूँ, तामस और राजस में आकर इच्छाएं वासनाओं को सत्ता देता हूँ, मेरे अनेक रूप है। ऐसा जो अनुभव करने लग जाए उसके लिए फिर न मृत्यु न जन्म, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न मैं जाति भेद, जाति का भेद नहीं, वर्ण का भेद नहीं, गुरु और शिष्य का भेद नहीं, चिदानंद रूपम शिवोहम। के बाप जी वे हमारे हूं करवो, तुमको क्या करना, ये मैं कहूं कि तुम ये करो ऐसी बात नहीं। तुम इन कथाओं से समझ लो कि तुम कहां हो और तुम्हारे चित्त की सेटिंग कहां अच्छी तरह से होती है। तुम्हें ज्ञान मार्ग में गति करने की हिम्मत है तो उस जैसा कोई रास्ता नहीं। यदि ज्ञान मार्ग में गति करने की हिम्मत नहीं और फिसल फिसल जाते हैं तो फिर यम नियम का थोड़ा अवलंबन लेकर, जर्नल में तो ये कहना होगा कि तुम प्रतिदिन थोड़ा बहुत सत्संग चाहिए, काम करने के बाद, कार्य पूरा होने के बाद अथवा कार्य के बीच आप देखो कि ये काम मन ने, इंद्रियों ने और वृत्तियों ने किया, इसको सत्ता देने वाला मैं, वृत्तियों का साक्षी चैतन्य ओम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शांतोहम। एक आध घंटा बीत गया, फिर आप दो मिनट ब्रेक मार दी, एक आध घंटा काम किया, फिर एक आध मिनट आपने अपने चित्त को, चित्त की वृत्तियों को, प्रवृत्तियों को देखा। एक उपाय ये भी सुगम है। दूसरा, आप दो तीन महीने के लिए प्रयोग करें, चलते फिरते के सब स्वप्न है, लेकिन बड़ा कुशल, सतर्क और स्फूर्तिदायी जीवन होता है ज्ञानी का। मिथ्या मिथ्या करके आलस्य प्रमादी जैसे कोई लोग सत्संग थोड़ा बहुत वेदांत का सुन लेते हैं, फिर तो नींद में और गप सप में जीवन गमाते हैं। नहीं, जीवन तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि अब सुख के दाता बन जाओ। देह अध्यास घटाने के लिए सुगम उपाय है कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब है कि अपने से हो सके उतना दूसरों को सुख दो। जो दूसरों को सुख देते देने की आदत पड़ जाएगी तो अपने सुख की परवाह नहीं होगी। अपना सुख दूसरों को सुख देते समय अपने आप ऑटोमेटिक भीतर से शुरू हो जाएगा। बाहर के सुख की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर के सुख की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। जितना हो सके दूसरों को सुख पहुंचाओ। दूसरों को बाबा जी फिल्म की टिकट लेके देवे, वो सुखी हो जाएंगे। इसमें फिर कैसे सुख पहुंचाए वो ढूंढना पड़ेगा। और सच्चा सुख पहुंचाना है तो दूसरों को हरि चर्चा में, दूसरों को सत्संग में, सत्य साधना में। तो सजातीय प्रवृत्ति में यदि दूसरों को सुख पहुंचाओगे तो वो बहुत तीव्र बढ़िया साधना होगी। नहीं तो फिर दूसरे जिस ढंग से भी थोड़ा बहुत दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों की सेवा के तरफ समय जाए, शक्ति जाए, तो ये कर्म योग उसका नाम बन जाता है। कर्म तो करे लेकिन इस कर्म से वासना बढ़े नहीं, लेकिन हमारे चित्त में भोग की वासना घटकर हमारा अपने साथ मिलाप होता जाए, योग होता जाए। ये संसार जीवन में जीने वाले संसारी लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है। ये कर्मयोग करोगे तो वाहवाही हो जाएगी, थोड़ा यश हो जाएगा, और फिर समझोगे कि बस। तो फिर सत्ता या सत्ता वाले आपको बोलेंगे, लो टिकट, आप इन लड़ो, हम बैठा छे अन कुर्सोय मळे, अन वळी पाछा वासना वाला लोगों नो संग थाय तो वळी डाउन थवानी शक्यता। उस लिए सत्संग को न छोड़े, सत्संग को न छोड़े, और अपने को ऊंची दृष्टि रखें कि हमारा लक्ष्य क्या है। प्राप्तम राज्यम, राज्य प्राप्त भी हो गया, ततः किम, चक्रवर्ती सम्राट भी हो गए, ततः किम, नगर सेठ हो गए, ततः किम, पहलवान हो गए, आखिर कब तक, उससे क्या। सब कुछ हो गया फिर भी एक दिन सब न होने में बदल जाएगा। जब न होने में बदल जाएगा तो अभी से समझ लो नहीं है, और नहीं के तरफ ही तो जा रहा है। जो कल दिन था आज वो नहीं है, जितना कल उम्र था आज वो नहीं है, शरीर में जो कल अन्न जल ये वो था वो आज उस रूप का नहीं है, सब नहीं में जा रहा है। जो सब नहीं में जा रहा है तो नहीं है। ऐसा करके देह अध्यास को गलाने का प्रयत्न करें। देह को गलाने का नहीं, देखना गलती न हो, मिठू वधारे खाओ, खांड वधारे खाओ, आप देह गली जाए, ओगली जाए, नहीं नहीं, देह में अध्यास जो अहम प्रत्यय है उसको गलाने। कभी नदी किनारे चले गए, सरोवर किनारे चले गए, नदी की बहती धारा को देखा कि धारा बह रही है, बहती हुई धारा, आंखों की किक्कियों को एकाग्र कर दिया, मन एकाग्र होगा, देखो कि नदी किनारा धारा बह रही, पानी बह रहा है, बहते पानी को देखने वाला मैं हूं, ऐसी बहती वृत्तियों को देखने वाला मैं, वृत्तियों से परे वृत्तियों का साक्षी, वाह वाह, ओम आनंद, ओम शांति, ओम। कभी छत पर चले गए, तारे टिमटिमा रहे, अंधेरी रात है, उनके तरफ देखते 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 चित्त एकाग्र कर लिया, फिर कहीं तारे होकर मैं टिमटिमा रहा हूं, कहीं चांद होकर मैं चमक रहा हूं। कभी चले गए, पूर्णिमा की रात है या और कोई चांदनी का अच्छा वातावरण है, चांद के तरफ देखा, आंखों को खोला बंद किया, खोला बंद किया, दो एक दो मिनट, इससे आंखों की रोशनी भी थोड़ी बढ़ती है। फिर एक टक चांद को देखते देखते आए, चांद तू मेरी चेतना से चमकता, तू मैं है, मैं तू हूं, वाह वाह वाह। कभी ऐसे खुले आकाश में निहारा, दृष्टि एकाग्र करके निहारा तो दूर तक दृष्टि जाएगी तो आंखों की कसरत हो जाती है और आंखों की थोड़ी सुरक्षा भी होती है। जितना दूर साफ दिखाई दे उतना दूर तक सीधाई में देखने से आंखों के लिए हितावह। सीधाई में देखते देखते फिर दृष्टि को फैलाया, दृष्टि को फैलाते फैलाते अपने को फैला दिया, जैसे जहां तक नजर जाती है वहां तक अपने मन को फैला दिया कि साहब मैं ये अच्छा और ये बुरा ये दोनों गल जाता है। अशुभ करने की अपेक्षा शुभ करना अच्छा है, ठीक है ना। वृत्ति में पाप होने की बजाय वृत्ति से पुण्य होना अच्छा है। वृत्ति से पुण्य होने की बजाय वृत्ति के द्वारा परमात्मा देखना अच्छा है। परमात्मा देखने की अपेक्षा सबको परमात्मा तत्व मानना अच्छा है, और सबको परमात्मा तत्व मानने की अपेक्षा भी अपने सहित सब पर ब्रह्म है ऐसा जानना सर्वोपरि है। ओम 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 ओम। तीन महीना केवल तुम अभ्यास करो, तुम्हारे आगे बहुत कुछ अनुभूतियां आ जाएगी। हो सकता है कि आंख खुल जाए, हो सकता है कि आपको साक्षात्कार हो जाए। उठे सुबह 4 बजे के करीब, नहा धो के बैठ सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर ऐसे ही बैठ गए, वृत्तियों को देखा, फिर श्वासोश्वास को देखा, मैं देखने वाला हूं, ये सब दिखने वाला है, थोड़ा ये अभ्यास किया, फिर गहरा पूछा मैं कौन हूं वास्तव में, देखने वाला तो हूं लेकिन कौन हूं, मैं कौन हूं, ऐसा दोहराते जाओगे ना तो आपका स्वरूप कोई आकार नहीं के ऐसा होगा, आपका स्वरूप तो जो है शांत शुद्ध निसंकल्प, कोई संकल्प नहीं उठेगा, बड़ी शांति लगेगी। फिर मन इधर उधर जाएगा कि मन तो इधर उधर जाता है, तू जा, मैं तेरे को देखता हूं, मन को तो देखने वाला हूं लेकिन हूं कौन। इस प्रकार का थोड़ा अभ्यास करोगे कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि अरे असीम शांति का दरिया, आपकी योग्यता बढ़ जाएगी, बुद्धि की शक्तियां विकसित होने लगेगी। मजूरी कर करके जो रॉकेट वाले नहीं समझ पाए, ओ लीला रसा बापू, पाटन मेहसाणा लोकल चालू लोकल में शटल, पाटन मेहसाणा शटल हो चेन, शटल में उसने पढ़ के दिखाया कि बापू आज से 12-13 साल पहले की बात होगी, 14 साल बापू ऐसा है, ऐसा है, अब ऐसी संभावना है, अखबार में आया था बड़ा फोटो वोटो, बापू ने यूं करके, अरे बोले कुछ नहीं है तो खरे, कुछ नहीं होगा घड़ी भर में। इन बापू से पूछो कि आपकी ये तो बड़ी उपलब्धि है, हम लोगों की नजर में बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उन्होंने जो स्वरूप का साक्षात्कार किया उसके आगे कुछ नहीं। आत्म साक्षात्कार के आगे ये गरिमा या ये ज्ञान या ये देश देशांतर का पता या भविष्य का पता या ख्याल आ जाना, अच्छा तो ख्याल कैसे आता कि दिखता है, नहीं ज्ञानी के आगे चाहे अज्ञानी के आगे, आंखों के आगे जो चीज आएगी उतनी वैसी दिखेगी, लेकिन ज्ञानी को जो दिखता है उसकी वृत्ति इतनी सूक्ष्म हो जाती है, ब्रह्म तत्व में ब्रह्माकार वृत्तियों के इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि अनंत अनंत ब्रह्मांडों को फैल दे, फैली हुई जैसे आकाश आपका इस ब्रह्मांड को फैला हुआ है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है दूसरे, इस ब्रह्मांड को इस आकाश ने घेरा है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, वो चैतन्य परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि जिसका वाणी के द्वारा बयान नहीं है। छठे केंद्र का तो थोड़ा हम कल्पना संकल्प करके थोड़ा हिम्मत करके समझा भी सकते हैं, जब आखिरी तत्व ज्ञान की बात आती है ना तो वहां वाणी अवाच्य पद हो जाती है, जितना भी कहेंगे उसमें से कुछ न कुछ प्रतियोगी शब्द आ जाएगा, जो भी कुछ कहेंगे उसको काटने का शब्द दूसरा भी आ सकता है, पूरा सत्य कहने का विषय नहीं होता है, उसके इशारे हो सकते हैं, संकेत हो सकते हैं, संकेत हो सकते हैं, संकेत मात्र। कैसे संकेत? कैसे आ रहा था साधु, पकड़े पैर, बाबा जी गृहस्थी हूं, चार बच्चे यहां है, शादी करानी है, पैसा नहीं है, संध्या के समय आपके दर्शन हुए, अभी 8 ही बजे हैं, दिए जले थे तब से बैठा हूं, बाबा जी कोई संत मिल जाए, आप आए, दया करो। बाबा ने कहा दया क्या, दया वाया क्या, मैं आ रहा था तो कोई कहीं मणि पड़ी थी, कोई हीरा पड़ा था, ठीक रहा था ना, उसको मैंने मणि के ऊपर रख दिया। तो यहां से आधा मील जाना, फिर दाहें थोड़ा सा मुड़ना, एक झाड़ है, झाड़ के वो पेड़ है पीपल का, उसके पास में वो पड़ा है घड़ा। अब क्या है कि अंधेरी रात है, घड़ा के द्वारा, घड़ा से मणि ढका हुआ है। उसने उठाया फानस, हाथ में लिया डंडा, चला चला तो जो चिन्ह मिले थे वहां पहुंच गया। जब तक वहां नहीं पहुंचा था तब तक तो उसको फानस काम में आया। अब वहां पहुंचा और देखा कि वो घड़ा से ढका हुआ कुछ है, उठाए क्या, सांप हो क्या, हो क्या पता, कोई घुस गया हो तो मार दिया जोर से डंडा, डंडा मार दिया तो वो जो मणि है ना वो प्रकाशित हुई। अब मणि को देखने के लिए क्या वो फानस की बात ऊपर करेगा? नहीं, मणि स्वयं प्रकाश है। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि रूपी लालटीन तब तक तहां तक जाती है जहां तक वो मणि ढकी हुई है। अब मणि जब खुल गई तो तुम्हारी बुद्धि का प्रकाश उसमें मिल जाता है, फिर उसका बयान नहीं हो सकता। अरवा मणि बाबा जी ने बताई थी आधा मील दूर, लेकिन कृष्ण जो मणि बता रहे हैं, वेद जो मणि बता रहे हैं, संत पुरुष जो मणि बता रहे हैं, वो आधा इंच भी दूर नहीं है, पाव इंच भी दूर नहीं है, आधे दूरा, आधा दूरा भी इंच नहीं, दूर नहीं है। इतनी वो नजदीक है और आज तक पाया नहीं, क्योंकि बहुत नजदीक होता है ना उस वस्तु का ख्याल ही नहीं होता, जो अत्यंत निकट है ना उसका ख्याल नहीं होता, दूर की चीजें दिखती है लेकिन आंख का निकट का हिस्सा नहीं दिखता। आंख दूर दूर देखती है लेकिन ये हिस्सा नहीं देखती। इसको देखने के लिए फिर आईना लाओ तो आईना में ऊंधा देखेगा। मैं देख रहा हूं मुंह है पूरब को तो देखेगा पश्चिम में, उधर देखेगा डाबो खबो जमणो थे जैसे, जमणो डाबो थे जैसे। इसीलिए हम संसार की बुद्धि से देखते हैं तो वो सत्य हमको ऊंधा दिखता है, जगत होके भासता है। जय जय। और ये ऊंधा दिखता है ऐसा समझ जाए तो उसको सीधा कर ले। ओम 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 ओम। तो तीन मैंने एक प्रयोग करके देखो कि ये मिथ्या, ये मिथ्या, ये मिथ्या, ये मिथ्या, ये स्वप्न, ये स्वप्न, ये स्वप्न, ये स्वप्न, ये स्वप्न, जो दिखे, खाओ तो भी स्वप्न, ये खा रहा है, पियो तब ये पी रहा है, बोलो तब ये बोल रहा है, और वृत्ति में चिंता है कि वृत्ति को चिंता है, ठीक है तू कर चिंता, देखो उसी समय चिंता भागती कि नहीं भागती। जय जय। डर गए, डर शूत से हाँ, चित्त को डर आया क्योंकि पुराने संस्कार है, क्रोध आया पुराने संस्कार हैं, चित्त के हैं, मेरे नहीं है। आपका इतना बचाव होगा कि जो लोग उपवास कर रहे हैं, खड़े स्वरी होकर तप कर रहे हैं, उससे आपको बैठे स्वरी में 1000 गुना फायदा हो जाएगा। ओम 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 ओम। यस्य ज्ञानमयम् तपः। ग्राहक को लो दो बात करो, किन ऐसा व्यवहार करो कि वो ग्राहक के रूप में मैं ही आया हूं, फिर देखो कर्म योग बन जाता है। जहां जहां नजर जाए पहले तो उसका अपना स्वरूप समझो, अथवा तो इस देह को उस देह को खिलौना समझो, बाकी दोनों देहों के अंदर जो चमक रहा है वो विदेही चैतन्य का विलास, ये घड़ा वो घड़ा दिखता है, दोनों के अंदर आकाश एक, ऐसा भाव चलते फिरते घूमते अभ्यास किया जाए, सब मिथ्या सब सपना। अथवा तो दूसरा रास्ता है, सब मैं ही हूं, वो भी ठीक है, सब मिथ्या है जो आकृति में दिखता है मिथ्या है, लेकिन आकृति को जो सत्ता दे रहा है वो सब मैं ही हूं। ये जो चिंतन है ना, सतत तुम ध्यान भी नहीं कर सकोगे, सतत तुम जप में माला लेके बैठो तो भी नहीं होगा, स्मृति होगी और स्मृति में भी थोड़ी स्मृति भी हटाओगे तभी तो खाना पीना होगा, लेकिन स्मृति तीव्र होगी तो खाने पीने के और वृत्तियों का प्रभाव नहीं होगा। तो अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करू दिन राती। स्मृति भरना चाहते हम ठीक है, स्मृति भी होगी तब आनंद, और स्मृति से कुछ विपरीत हो गया तो स्मृति तो हुआ अच्छा ही है, लेकिन स्मृति इतनी हुई कि भगवान के भक्त बन गए और भगवान विष्णु के हम गरुड़ बन गए। गरुड़ के जीवन की एक कथा है कि रामा अवतार में मेघनाथ के साथ भगवान राम की जब युद्ध हुई तो मेघनाथ ने देखा कि कुछ हमारा असर नहीं होता इन पर, कल तक मैं कल शाम तक इनको कुछ कर दिखाऊंगा। उन्होंने क्या किया कि मेघनाथ ने अपना नागपाश फेंका और प्रभु जी बंध गए। प्रभु जी बंध गए, नारद ने देखा कि ठाकुर जी बंध गए, क्या किया जाए। गए गरुड़ के पास, भगवान बंध गए, चलो तुम्हारे सिवा अब नागपाश से छूटना उनका मुश्किल। और नारद जी ने कहा गरुड़ तैयार हो गए। गरुड़ जैसे तैसे नहीं थे, वो जब उड़ान लेते थे तो उनकी पांखों से सामवेद की छंदे निकलती थी, ऐसे थे वो। हाय हाय तो सपों को निगला और प्रभु नागपाश से मुक्त हो गए। गरुड़ के मन में आए अगर मैं नहीं आता तो इनका क्या हाल होता। देखो वृत्ति कैसा धोखा दे देती है, वृत्तियों में जी रहे ना हम लोग। अब इनका क्या होता, तो जिनकी स्मृति जिन में श्रद्धा थी उनकी स्मृति से रस आ रहा था, अब श्रद्धा डाउन हो गई तो स्मृति से रस आना बंद हो गया। जो रस आने का रस था वो बंद हो गया तो विरसता उनको खटकने लगी, विक्षिप्त हो गए। खटकने लगी विक्षिप्त हुए गए भगवान शंकर के पास, ऐसी कथा है। ये कथाएं सब महापुरुषों ने जिन्होंने बनाई बड़ी करुणा की, सत्य को समझाने के लिए न जाने क्या क्या उन्होंने तैयार किया। गए शिव जी के पास, अशांति हो गई। कारण क्या, बोले कारण तो और कुछ नहीं, नागपाश से प्रभु को छुड़ाया उसके बाद अशांति हुई। प्रभु को नागपाश से छुड़ाने से अशांति नहीं हुई, लेकिन स्मृति में जो श्रद्धा थी उसके कारण जो स्मृति थी श्रद्धा दान हुई तो स्मृति में गड़बड़ हुई। आप किसी के प्रति श्रद्धा करते और उसका स्मरण करते तो आपको रस आएगा, और उसी के बारे में कोई आदमी आपको इधर उधर बता दे आप न माने और श्रद्धा बनाए रखे, फिर भी उसकी सुनी हुई बात कभी कभी खटकाव देगी तो आपको लगेगा कि फलाना आदमी की बात तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन वो अभागा निंदक जब से मिला ने तब से साई पहले जैसा मजा नहीं आता है। हो जाएगा ठाकुर जी में, भगवान में, गुरु में, कृष्ण में, राम में, रहमान में, किसी में। तो ये स्मृति का सुख हुआ, वृत्ति में स्मृति का सुख। शिव जी ने कहा कि तू इष्ट का निंदक, तेरे को कथा हम नहीं सुनाते, तेरे आगे राम की चर्चा हम नहीं करते। जा खग की भाषा खग ही जाने, पक्षी की भाषा पक्षी जाने। तुलसीदास ने कहा खग की भाषा खग ही जाने, कागभूषण को भेज दिया, गरुड़ को भेज दिया कागभूषण के पास। कागभूषण के इलाके में जाने मात्र से उसका जो संदेह था राम के प्रति, भगवान राम के प्रति नर है ऐसा है क्या होता है, वो निवृत्त हो गया। स्मृति बनी, फिर सत्संग सुनकर वो वृत्ति तदाकार हुई, तब कागभूषण की कृपा से गरुड़ को आनंद हुआ, अपने स्वरूप की झलके आई। तो गरुड़ जैसे व्यक्ति की अवस्था वृत्तियों में जीते हैं तो एक जैसी नहीं रहती, तो हम लोग तभी दुखी रहते हैं कि हमारी वृत्तियां हम चाहते कि एक जैसी रहे, हमारी अवस्था एक जैसी रहे, हमारी परिस्थितियां एक जैसी रहे। खून पसीना बहता जा, तान के चादर सोता जा, ये किस्ती तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। तो किस्ती हिल रही है, किस्ती में बैठा हुआ किश्तीकार भी हिल रहा है, लेकिन वो अपने को दो शरीर को और किश्ती को हिलता हुआ देखकर ज्ञान तो नहीं हिल रहा है। किश्ती शांत थी तब भी तू था, किश्ती हिल रही है तब भी तू था, किश्ती में बैठा तब भी तू है, किश्ती से बाहर आ गया तब भी तू है, तू तो ज्यों का त्यों है। ज्ञान ज्यों का त्यों है, अंतःकरण बदलता रहता है, इंद्रियां बदलती रहती है, उनको देखने वाला, देखने के साधन अनेक लेकिन देखने वाला मैं एक, सुनने के साधन अनेक, चीजें अनेक, सुनने के विषय अनेक लेकिन उसका ज्ञान एक, चखने के विषय अनेक, रस के विषय अनेक लेकिन उसका ज्ञान एक, मन के संकल्प और वृत्तियां अनेक लेकिन उनको देखने वाला मैं एक, बुद्धि के निर्णय अनेक उनको देखने वाला मैं एक। तो ज्ञान तो एक ही है, और जो यहां एक ज्ञान है वही का वही सब में है। ये बात समझ में आए तो अभी भी मुक्ति हो सकती है बाबा, देर नहीं। फिर ये केंद्र बेंद्रों की भी कोई परवाह नहीं। जय जय। लेकिन ये ज्ञान समझ में सुन लेते हैं, समझ में आने को भी राजी है ये ज्ञान, लेकिन हमको उस ज्ञान की तड़प नहीं, प्यास नहीं है, क्योंकि संस्कार है वृत्तियों को बहलाने का। भगवत प्राप्ति की तड़फ हो तो श्रवण मात्र से साक्षात्कार हो सकता है, नो डाउट इन इट। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कुछ करने से भगवान मिलता भी नहीं, जो करने से मिलता है वो न करने से चला जाएगा। जय जय। तो उसका मतलब ये भी नहीं कि चलो करने से भगवान नहीं मिलता तो अपने तो पिक्चर देखो खाओ पियो तो फिर अनर्थ कर लोगे अपने साथ। ऐ तो एकदम टॉप की बात है, कर करके जब ऊंचाई पे आ जाते ना तब पता चलता है करने से कुछ नहीं मिलता तो शांत हो गए, भोग की वृत्ति चली गई तो अब त्याग की वृत्ति भी नहीं रही, अवृत्तियों से निवृत्त तत्व का साक्षात्कार हो गया। फिर उसके लिए जब ऊंचाई का बोलते हैं ना तो कभी कभी खतरा भी पैदा हो जाता है, समझने वाले बहुत नीचे खड़े हैं और बोलने वाले एकदम टॉप की बात बता देते तो फिर वो समझने वाला नरक का रास्ता ले लेते। हे राम जी, जिनकी समझ का विकास नहीं होता और उनको यदि कहा जाए सब ब्रह्म है तो मानो वो वक्ता श्रोताओं को सीधा नरक में भेजता है। जय जय। मुझे हमारे श्रोताओं पर विश्वास है कि मेरे उपदेश का सही अर्थ लेंगे। सब ब्रह्म एटले के दे दमा दम, मन एक जीव रहतु नथी एटले दे संभोग से समाधि, मन एक जीव रहतु नथी एटले काय दे दमा दम। नहीं नहीं बाबा, मेरा कहने का तात्पर्य नहीं, तात्पर्य है कि अंदर में समझ तुम्हारी ऐसी रखो कि जिस वक्त दुख आए भोग तुम्हें आकर्षित करे तो बहुमत समझो कि भोग का आवेग आ गया, सदा नहीं रहेगा, घड़ी भर आप मन को दूसरे में बहला दो भोग की वृत्ति खत्म हो जाएगी। क्रोध आया, ये आदमी बुरा है लेकिन वो सदा बुरा नहीं देखेगा, तुम्हारी वृत्ति क्रोधाकार आई है वो टिकेगी नहीं, वृत्ति निवृत्त हो गई तो वो क्रोध करने के और डांटने के काबिल लगता है, फिर तुमको प्यार करने के काबिल देखेगा। जय जय। तो उस बहाव में तुम बहो मत, समझ गए ना कहने का तात्पर्य कि बाबा जी बह भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, पराशर बह गए तो ओहो यार फिर गलती करते। बह जाने के बाद वो खटकता है, पंच होता है, गुणाती तो हम हुए नहीं, स्वरूप में पहुंचे फिर तो बहना दुराना कोई प्रश्न नहीं, लेकिन उसके पहले यदि हम बहे तो फिर वो खटकता है, अभी नहीं तो देर सबेर। औरंगजेब जा रहे थे, कोई नग्न नंग धड़ंग दिगंबर अवस्था में साधु बैठा था, लोग राजाधिराज महाराज गणखम्मा कर रहे थे, लेकिन वो साधु टांग पे टांग चढ़ाए एकदम दिगंबर। औरंगजेब ने आकर घोड़ा रोका, बोले माना तू फकीर हो गया कि मेरे जैसा सम्राट निकल रहा है, कंबल पड़ा है, ओढ़ लेता तो तेरा क्या बिगड़ता, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो बोले तेरे को अच्छा नहीं लगता तो तू ओढ़ा दे मेरे को। मैं नंगा बैठा हूं, तेरे को अच्छा नहीं लगता है, तू ओढ़ा दे। वो फकीर को उठाकर कंबल ओढ़ाने को गए तो देखा कि दो तीन मुंडियां अंदर मस्तक पड़े हैं, और वही मस्तक पड़े हैं जिनको औरंगजेब ने अपने हाथों से उच्छेद कर दिया था, और सज्जन लोग थे। घबराया कि ये मेरे दुश्मन इधर, ये कैसे? फकीर ने कहा कि कंबल एक है, बोल तेरे पाप ढांकूं कि मैं अपना शरीर ढांकूं। मरते समय इतना पंच हुआ कि पिता को जेल में डालने का और उस साधु का अपमान करके अपने अहम को पोषने का मरते समय बड़ा पश्चाताप करते करते मरे। तो अहम में आवेश में आकर आदमी कुछ कर ले तो ऐसा नहीं कि छूट जाता है, तो करने में भी तो वृत्ति थी और पश्चाताप करने में भी तो वृत्ति थी। तो ये वृत्ति को वृत्ति देख लिया ना, बड़ा मजा आ जाएगा। ऐसा भी अभ्यास आपका चलते फिरते हो सकता है कि ये वृत्ति है, ये सब वृत्ति का खिलवाड़ भी दिख जाए तो भी आप समझेंगे कि संसार है, ये माया है, खेल है।